ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा की बैठक आज भी नहीं हो सकी। लोकतंत्र पर हमले की स्थिति में संसद में चर्चा और बहस का माहौल बनाने के लिए दलों से सभामुख देवराज घिमिरे का आग्रह। संविधान और कानून की व्यवस्था के मुताबिक कार्य संपादन में उत्पन्न बाधा हटाने के लिए प्रतिपक्ष दलों से नेकपा एमाले ने किया आग्रह। विश्व बैंक ने पुल सुधार और मरम्मत के लिए नेपाल सरकार को लगभग 20 अरब रुपए किए प्रदान। और इसराइल द्वारा गाजा में जारी हमले में आज कम से कम 22 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के थाईलैंड के औपचारिक भ्रमण और बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी के प्रयास बिम्स्टेक के 6वें शिखर सम्मेलन में सहभागिता के विषय में आज पूर्व प्रधानमंत्रियों और पूर्व परराष्ट्र मंत्रियों के साथ परामर्श किया गया। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय सिंह दरबार में आज इस विषय पर विचार विमर्श हुआ। बता दें कि प्रधानमंत्री ओली का इसी चैत 19 से 23 गति तक थाईलैंड के औपचारिक भ्रमण तथा बिम्स्टेक के 6वें शिखर सम्मेलन में सहभागी होने का कार्यक्रम है। प्रतिनिधि सभा की बैठक सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। आज सुबह 11 बजे हुई बैठक के शुरू में ही प्रतिपक्षी दलों के सांसदों के अवरोध के बाद सत्तापक्ष के सांसदों ने बैठक संचालित करने की मांग की थी, लेकिन प्रतिपक्षी दलों का अवरोध बरकरार रहने के बाद सभामुख देवराज घिमिरे ने बैठक को 15 मिनट के लिए स्थगित किया था। उसके बाद भी दलों के बीच सहमति न हो सकने के बाद फिर से बैठक को अपराह्न 4 बजे तक के लिए स्थगित की गई, लेकिन 4 बजे भी बैठक न हो सकने के बाद सूचना प्रकाशित कर कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ये जानकारी संसद सचिवालय के महासचिव पद्म प्रसाद पांडे ने दी। बता दें कि प्रतिपक्षी दल कुलमान की सिंह को नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक पद से बर्खास्त कर हितेंद्र देव शाक्य को नियुक्त किए जाने के संबंध में प्रधानमंत्री द्वारा संसद में जवाब न दिए जाने की मांग के साथ संसद बैठक में अवरोध करते आ रहे हैं। इसी तरह राष्ट्रीय सभा की आज के लिए निर्धारित बैठक स्थगित हो गई। अगली बैठक कल सुबह 11 बजे के लिए बुलाई गई है। ये जानकारी संघीय संसद सचिवालय ने दी। इससे पूर्व संसद भवन नया वानेश्वर में आज राजनीतिक दलों के प्रमुख सचेतकों के साथ हुई बैठक में सभामुख देवराज घिमिरे ने शुक्रवार को तीन कुने की घटना को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए संसद में चर्चा और बहस का माहौल बनाने की अपील की। सभामुख घिमिरे ने कहा कि राष्ट्र पर हुई इस घटना पर चर्चा करके संसद को सक्रिय दिखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सदन का संचालन न होने की स्थिति में भी संसद को चलाना जरूरी है। किसी भी हालत में सदन का अवरोध उचित नहीं है। बैठक में नेकपा एमाले के प्रमुख सचेतक महेश कुमार बरतौला ने बताया कि प्रधानमंत्री कल 18 चैत की बैठक में संबोधन करेंगे। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि संसद अवरोध खोलने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच टेलीफोन पर वार्ता हुई है। नेकपा एमाले ने संविधान और कानून की व्यवस्था अनुसार कार्य संपादन में उत्पन्न बाधा को हटाने का प्रतिपक्षी दलों से आग्रह किया है। आज पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता में हुई सचिवालय बैठक ने कहा है कि प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा में अवरोध के कारण प्रतिस्थापन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया में व्यवधान सृजित होने के प्रति ध्यान आकर्षित हुआ है। ये बात एमाले के महासचिव शंकर पोखरेल द्वारा जारी किए गए बयान में कही गई है। महासचिव पोखरेल ने बताया कि बैठक द्वारा सरकारी विधेयक का संविधान और कानून की व्यवस्था अनुरूप संपादन करने के कर्तव्य की ओर राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष और प्रतिनिधि सभा के सभामुख का ध्यान आकर्षण भी किया है। गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों और सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है, उन्हें जवाबदेह बनाना चाहिए। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल के 27वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर आज आयोजित कार्यक्रम में गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा कि लोकतंत्र का विकल्प निरंकुशता नहीं हो सकती। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान जनप्रतिनिधियों और संसद में मौजूद लोगों की कमजोरियों को सुधारने के लिए सरकार तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार संचार क्षेत्र की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। लोकतंत्र में मजबूत, निष्पक्ष और सुरक्षित पत्रकारिता आवश्यक है। सरकार ने इस्लाम धर्मावलंबियों का ईद त्यौहार ईद उल फित्र के अवसर पर कल सार्वजनिक छुट्टी देने का निर्णय किया है। नेपाल राजपत्र में प्रकाशित सूचना के अनुसार कल चैत 18 गते सोमवार ईद पर सार्वजनिक छुट्टी देने का निर्णय किया गया है। ये जानकारी गृह मंत्रालय के सहसचिव एवं प्रवक्ता रामचंद्र तिवारी द्वारा आज शाम जारी विज्ञप्ति में उल्लिखित है। नेपाल में तीसरा पुल सुधार और मरम्मत कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए विश्व बैंक 20 अरब 40 करोड़ रुपए प्रदान करेगा। बैंक के कार्यकारी निदेशक बोर्ड ने 15 करोड़ अमेरिकी डॉलर का वित्तीय पैकेज आज स्वीकृत किया। ये सहायता रकम नेपाल के रणनीतिक सड़क संजाल पर निर्मित पुलों की मरम्मत और सबलीकरण के लिए स्वीकृत किए जाने की जानकारी वाशिंगटन डीसी स्थित विश्व बैंक के प्रधान कार्यालय ने दी। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415 # डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल के 75वें वार्षिकोत्सव हीरक महोत्सव के अवसर पर आज सिंह दरबार में संगीत जगत के कलाकारों के साथ एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कलाकारों ने रेडियो नेपाल को गीत संगीत के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने की सलाह दी। कलाकारों ने कहा कि सूचना, संचार, साहित्य और संगीत के विकास में रेडियो नेपाल ने स्थापना काल से ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए इसके संरक्षण पर भविष्य में और काम करने की जरूरत है। पीएसबी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ महेंद्र विष्ट ने संगीत के संरक्षण और विकास के लिए कलाकारों को सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई। इससे पहले सिंह दरबार में शास्त्रीय संगीत सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें 24 कलाकारों ने भाग लिया था। हिमालयन रेस्क्यू एसोसिएशन ने घरेलू और विदेशी पर्वतारोहियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सोलोखुम्बू और मनांग जिलों के 3 स्थानों पर 14 सदस्यीय चिकित्सक टीम तैनात की है। टीम में 5 विदेशी और 4 नेपाली चिकित्सक शामिल है। ये पहल वसंत और शरद ऋतु में पर्वतारोहण करने वाले पर्यटकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष डम्बर पराजुली ने बताया कि इन केंद्रों पर पर्वतारोहियों का स्वास्थ्य परीक्षण और आवश्यक उपचार किया जाएगा। हिमालयन क्षेत्र में पर्वतारोहण के दौरान स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आम है और ये पहल पर्यटकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए की गई है। आज चैत शुक्ल प्रतिपदा के पावन अवसर पर वसंती नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है। हिंदू धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व है जो 9 दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा आराधना के साथ मनाया जाता है। तराई और मध्य क्षेत्र के विभिन्न जिलों में स्थित देवी शक्तिपीठों एवं मंदिरों में आज से नवमी तक मां नव दुर्गा की विशेष पूजा का आयोजन किया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में 2 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। दोनों नवरात्रियों में समान विधि विधान से मां दुर्गा की आराधना की जाती है। पर्व शक्ति उपासना का प्रमुख समय माना जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजरायली सेना द्वारा गाजा पट्टी पर जारी हमलों में आज कम से कम 22 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई जबकि दर्जनों घायल हुए हैं। इस हमले के बाद गाजा में हिंसा और तनाव का माहौल और बढ़ गया है। इजरायली वायुसेना ने गाजा के अल शती शरणार्थी शिविर पर राफा क्षेत्र पर हमला किया जिसमें कई घर नष्ट हो गए। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल है। अब मौसम अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा की बैठक आज भी नहीं हो सकी। लोकतंत्र पर हमले की स्थिति में संसद में चर्चा और बहस का माहौल बनाने के लिए दलों से सभामुख देवराज घिमिरे का आग्रह। संविधान और कानून की व्यवस्था के मुताबिक कार्य संपादन में उत्पन्न बाधा हटाने के लिए प्रतिपक्षी दलों से नेकपा एमाले ने किया आग्रह। विश्व बैंक ने पुल सुधार और मरम्मत के लिए नेपाल सरकार को लगभग 20.5 अरब रूपये किए प्रदान। और इसराइल द्वारा गाजा में जारी हमले में आज कम से कम 22 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।